الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما یہ سورة طٰہٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے. اس واقعے کا کچھ حصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب فرعون پانی میں ڈوبا دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی فیملی بنو اسرائیل سمندر کو پار کر کے دوسری طرف نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک ایریے سے پاس ہوئے. وہاں ایک قوم رہتی تھی جس قوم کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, بت پرستی کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم برسوں برس تک فرعون کی غلامی میں رہ چکی تھی اور ابھی ابھی غلامی سے آزاد ہو کے آ رہے ہیں. اور ایک عجیب بات ہے कि जो कौम किसी की गुलाम बन के रही हो, उनके ख्यालात, उनकी सोच, उनकी फिक्रें बहुत छोटी होती है, उनकी अकल और उनकी सोच में वो वुसअत, वो तरक्की, वो कुशादगी नहीं होती जो आजाद और इज्जत से रहने वाली कौमों में हुआ करती है। गुलाम कौमों की अकल भी गुलामों जैसी। अब ये बनू इसराइल सदियों से फिरौन के गुलाम रहे थे, तो जब इन्होंने देखा कि एक कौम है मूर्ति पूजा कर रही है, बुत परस्ती कर रही है, तो इन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम को अजीबोगरीब रिक्वेस्ट की। अल्लाह ने उनकी रिक्वेस्ट भी कुरान में नकल फरमाई, कहने लगे कि इजअलना इलाहन कमा लहुम आलिहा। ए मूसा, ये कितनी अच्छी कौम है कि इनका खुदा उनको आंखों से दिखता है और हमारा खुदा तो हमको आंख से दिखता नहीं है। जो खुदा नजर नहीं आता हम तो उसकी इबादत करते हैं, और ये कौम देखो उनकी मूर्ति, उनका देव, उनका भगवान उनके सामने नजर आता है। तो कहा हजरत हमारी दरख्वास्त ये है कि इजअलना इलाहा, जैसा उनका खुदा ऐसा हमारा भी खुदा होना चाहिए कि हमारा अल्लाह भी नऊज़ बिल्लाह हमको सामने दिखे और सामने नजर आवे और हम उसकी इबादत करें। हजरत मूसा अलैहि सलाम कहने लगे कि तुम तो बड़े नादान लोग हो, कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो कि तुम्हारे नबी को अल्लाह नजर नहीं आए तो तुमको कहां से नजर आएंगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब तूर पहाड़ पे तशरीफ ले गए थे तो अल्लाह सुबहानहु व ताला की बात सुनी मूसा अलैहि सलाम ने, तो खुदा की बात सुनी तो इतना मजा आया मूसा अलैहि सलाम को कि मूसा अलैहि सलाम ने रिक्वेस्ट कर दी अल्लाह ताला से, قال رب أرني أنظر إليك। ए अल्लाह, मैं तेरा दीदार चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। तेरी बात इतनी प्यारी है, इतनी मिठास है तेरी बात में, इतनी मोहब्बत है तेरी बात में, तो तेरा दीदार कितना प्यारा होगा। अल्लाह तेरी जियारत मुझे करवा दे। तो क्या जवाब मिला, قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني। मूसा, इस दुनिया में रहते हुए कोई हमारा दीदार नहीं कर सकता, कोई हमको नहीं देख सकता। तो ये अजीब इनकी कौम ने मुतालबा कर दिया कि हजरत हमें तो अल्लाह को देखना है, अल्लाह हमारे सामने होवे और अल्लाह को देख करके हम अल्लाह की इबादत करें। इस जगह एक अजीब इश्क मोहब्बत की बात बतलाऊं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सामने से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह तुझे देखना है मुझे। जवाब मिला कि मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते दुनिया में रहते हुए, मेरी तजल्ली का नूर तुमको देखने को मिलेगा। कुर्बान जाऊं, 100 मरतबा कुर्बान जाऊं, अपनी हर चीज को कुर्बान कर दूं, अपने आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। का अल्लाह ने खुद बुलाया, और अपना दीदार करवाया बुलवा करके महराज की रात में सातों आसमान के ऊपर शाही मेहमान बन करके अल्लाह बुला रहे हैं और बुला करके अल्लाह खुद दीदार करवा रहे हैं अपनी जात का। हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नूरानियुन अराहु, मैंने अल्लाह ताला का अपनी आंखों से दीदार किया, अल्लाह को मैंने देखा। का ये मूसा अलैहिस्सलाम है, सामने से दरखास्त करते हैं दरखास्त मंजूर नहीं होती, और ये हमारे हुजूर हैं कि अल्लाह खुद बुला रहे हैं दीदार करने के वास्ते। कितना आला मकाम होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह हुजूर की कामिल मोहब्बत हमें अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए, हुजूर की सुन्नतों का इत्तिबा अल्लाह हमें नसीब फरमाए। फिर ये हुआ कि मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला को बात पहुंचाई कि अल्लाह देखो ये मेरी कौम, इनको तो वो मूर्तियों जैसा खुदा चाहिए जो सामने नजर आता हो। अल्लाह ने जवाब दिया कि मूसा एक काम करो, अपनी कौम को कहो कि अल्लाह मुझे तूर पहाड़ के ऊपर बुला रहे हैं, तूर पहाड़ पे अल्लाह ताला मुझे बुला रहे हैं, और बुला करके अल्लाह ताला मुझे आसमानी किताब देंगे, उसके अंदर अल्लाह की शरीयत लिखी होगी, उस पर तुमको अमल करना है। और मैं जाता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अल्लाह ने फरमाया मूसा 30 रोजे रखने हैं आपको। वावादना मूसा सलासीन लैला, 30 रोजे आपको रखने हैं मुसलसल कंटिन्यू। माशाल्लाह इस साल हमारी तकदीर में भी 30 रोजे हैं। गुज़िश्ता साल भी 29 रखे थे, इससे पहले भी 29 रखे थे। मुसलमान तो माशाल्लाह फायदे ही फायदे में रहता है। और देखो आज 30वीं तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हो गई। हजरत कारी साहब ने जब पहली रकात में अलिफ लाम मीम चालू की तो मेरे दिल के अंदर एक वाकया याद आ गया कुदरती तौर पर। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत मौलाना जुबेर साहब दामत बरकातुहुम वो तरावी सुनाने तशरीफ ले गए सहारनपुर, हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को खानकाह में, इसको मेहराब सुनाना उनके यहाँ कहते हैं। इस तरह 29 में खत्म करके सहारनपुर से दिल्ली निजामुद्दीन तशरीफ लाए मरकज पर, तो उनके वालिद हजरत जी महाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज के बाद कहने लगे मौली जुबेर क्या इरादा है, आज 30वीं रात है क्या करना है। कहा अब्बा जी आप जैसे फरमाए। तो कहा चलो बड़ो मुसल्ले पे आगे। तो कहा मौलाना जुबेर साहब मुसल्ले पे आगे बढ़े, जवानी के दिन अलिफ लाम मीम से शुरू किया और सहरी तक में पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दिया है। तो मैंने सोचा कि कारी साहब पढ़ते चले जाएं, हम सुनते चले जाएं, लेकिन पता नहीं आप हजरात की तवज्जो काम कर गई। अल्लाह सुबहानहू व ताला हमें कुरान से सही मोहब्बत अता फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुम 30 रोजे रखो, मैं तुमको किताब दूंगा। 30 रोजे रखे, हजरत मूसा अलैहि सलाम के मुंह में बदबू पैदा हुई रोजों की बरकत से। हमें अपने रोजों का जायजा लेना चाहिए कि कभी हमारे रोजों में बदबू पैदा हुई, सोचना चाहिए हमें अपने रोजों को भी। हमें तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह टूटे फूटे हमारे रोजे कबूल फरमा ले। बाकी हदीस में है कि रोजदार के मुंह की बदबू अल्लाह की नजर में मुश्क से भी ज्यादा कीमती है। और ये बदबू जो है ना, मिसवाक और ब्रश न करने की वजह से नहीं, वो पेट खाली होने की वजह से, कि पेट खाली होवे और अंदर से बदबू निकले। और ये उसी वक्त होगा जब सहरी में रात के खाने में हम थोड़ी लिमिट से काम लेवे, तब जाकर के वो बदबू नसीब होती है। बाकी हमारे रोजों का हाल तो ये है कि मैं दोस्तों को कहा करता हूँ, रमजान से एक दिन पहले वजन करवाओ और ईद के बाद वजन करवाओ। वजन घटता है कि बढ़ता है वो हमें देखना चाहिए रमजान में। इसीलिए हम अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह जैसे रखे ऐसे तू कबूल फरमा ले। अब 30 रोजे रखे मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में बदबू पैदा हुई, तो आपने मिसवाक कर ली। अल्लाह के यहां से जवाब आया कि मूसा हमको तो तुम्हारी बदबू से प्यार और मोहब्बत थी जो तुमने मिसवाक करके खत्म कर दी, चलो फिर से और 10 रोजे रखो। कववादना मूसा सलासीन लैला फअतममना बिअशरा, और 10 रोजे रखवाए। फतम मीकातु रब्बी 40, 40 रोजे चिल्ला अल्लाह ने रोजों का पूरा करवाया। तब जाके अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को तौरात किताब अता फरमाई, लो ये तौरात ले जाओ, आपकी कौम को कहो कि मूर्ति पूजा नहीं करे, ये तौरात में जो लिखा है ऐसे अमल करे। हजरत मूसा अलैहि सलाम वहां तूर पहाड़ पे तशरीफ ले गए और यहां एक नया फितना खड़ा हुआ, अजीबो गरीब फितना। आप जब तूर पे तशरीफ ले गए तो अपने बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अमीर बना के गए। ऐसे तो नबी अपनी कौम में अमीर होते हैं, लेकिन अमीर जा रहे हैं तो अमीर की गैर हाजिरी के अंदर नायब अमीर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जिम्मेदार बनाया कि कौम की देखभाल करना। उस जमाने में एक मसला खड़ा हुआ, मसला ये खड़ा हुआ कि जब ये बनू इसराइल चले थे मिस्र से, इजिप्त से, तो बनू इसराइल की जो औरतें थी वो फिरौन के और फिरौन के खानदान के लोगों के यहां काम करने जाती थी। तो ये तमाम औरतें अपनी सेठानियों से कह रही है कि हमारी ईद का त्योहार का दिन है, ईद के दिन पहनने के लिए हमारे पास जेवरात नहीं है, नेकलेस नहीं है, रिंग नहीं है, तो हमको जरा तुम्हारे जेवरात दे दो, हम इस्तेमाल करेंगे, ईद के बाद फिर रिटर्न कर देंगे। इसको आरियत पर मांगना कहते हैं, यानी वापरने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मांग करके लाना। ये मांग के लाए जवेरात। और यहां तो दुनिया बदल गई रातों रात कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान किया कि चलो मिस्र छोड़ करके चले, और इधर फिरौन डूब गया, उनकी कौम तबाह हो गई। तो वो जो जवेरात थे सोने के, ये सब मूसा अलैहि सलाम की कौम की औरतों के पास रह गए। अब मसला खड़ा हुआ कि इन जेवरात का क्या करें, वो तो हमारे है नहीं, वो तो हम फिरौन की फैमिली की औरतों के पास लाए थे, तो अब इन जेवर का क्या करें। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम के अंदर मशवेरा हुआ, हजरत हारून अलैहि सलाम भी मशवेरे में थे। तय ये हुआ कि एक खड्डा खोदो और अपनी औरतों को ऐलान कर दो कि सब जवेरात लाकर के वहां खड्डे में डाल ले गए और ला ला करके अंदर डालो, उसको हम जो है जला करके पिघाल के खत्म कर देते हैं। ये मशवरा तय हुआ। अब सब औरतें आ रही है और जवेरात ला ला करके डाल रही है। वहां तो बात क्या थी कि रिटर्न करना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। बाकी शरीयत का मसला ये है कि किसी के पास इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज अगर ली हो तो फिर उसको वापस पहुंचाओ, ये उसके लिए मसला है। उसको हम सदका भी नहीं कर सकते, खैरात भी नहीं कर सकते कि जिसकी चीज ले ली, इस्तेमाल कर लिया, अब उसको ढूंढ ढूंढ के वापस पहुंचाओ, उसको खैरात भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो किसको वापस करे, इसलिए कि वो कौम ही खत्म हो गई, पूरी कौम तबाह हो गई फिरौन की, और वहां वापस मिस्र जाना इनके लिए इम्पॉसिबल था, तो क्या करे। कहा चलो इस सब को एक खड्डे में जमा करो और जमा करके उसको जलाओ, ये मशवरा हुआ। चुनांचे सब औरतें आ रही है, जेवर को डाल रही है। उस मौके के ऊपर हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम के अंदर एक बड़ा फितने वाला आदमी था, फितीन आदमी, और ऐसे फितना करने वालों से अल्लाह ताला पूरी कौमों की हिफाजत फरमाए। ऐसे एकाध आदमी भी हो जावे ना तो पूरी कौम को जिंदा कब्रस्तान पहुंचा देवे, पूरी कौम को बर्बाद कर देवे। ये फितीन आदमी, इसका नाम कुरान के अंदर है सामरी। ये सामरी बड़ा फितीन आदमी था, ऊपर ऊपर से तो कलमा पढ़ता था कि मैं मुसलमान हूं, और अंदर से वो ईमान वाला नहीं था, वो एक नंबर का मुशरिक आदमी था, बुत परस्त आदमी था। बल्कि हजरत इमाम कुर्तुबी की तफसीर के अंदर तो हाशिए पे लिखा हुआ है कि ये सामरी हिंदुस्तान का हिंदू था, जिसका जिक्र कुरान में है, और किसी तरीके से वो मिस्र पहुंच गया था, इजिप्ट, और मूसा अलैहि सलाम को कहने लगा हजरत मैं ईमान ले आया हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, लेकिन हकीकत के अंदर ये गाय की पूजा करने वाली कौम का आदमी था ये सामरी। अब था पक्का मुशरिक, गाय की पूजा करने वाला, लेकिन जुबान से कलमा पढ़ता था। वो अजीब फितना उसने खड़ा किया। उसके फितने की शक्ल ये हुई, अल्लाह ताला ने उसकी पूरी तफसील कुरान के अंदर बयान फरमाई। कालू मा अखलफना मौईदक बिमल्किना ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري। सब औरतें आकर के जेवर डाल के गई, इतने में मिस्टर सामरी आए और अपने हाथ के अंदर एक पड़ीका लेकर के आए और आके हजरत हारून अलैहि सलाम को कहता है, ये हजरत मैं भी ये डाल रहा हूं अंदर, लेकिन आपसे एक दुआ की दरखास्त करता हूं कि जो मेरे दिल में नियत है अल्लाह वो नियत को पूरी कर देवे, ऐसी दुआ कर दो। क्या नियत है वो फितीन ने नहीं बतलाया, बस आप मेरे लिए ऐसी गोल गोल दुआ कर दो जो मेरी नियत है वो नियत पूरी हो जाए। और ऐसे कभी किसी के लिए दुआ नहीं कर देने की, पता नहीं वो क्या दुआ करवाता हो। हजरत हारून अलैहि सलाम ये समझे कि इसकी फैमिली के पास भी कोई जवेरात होंगे, सोना होगा, वो डालने आया होगा। तो हजरत हारून अलैहि सलाम ने दुआ कर दी कि अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे, जो तेरी मुराद हो। बस जैसे ही दुआ हो गई उसने वो पूरी का खोला, उसमें सोना भी नहीं था, गोल्ड भी नहीं था, सिल्वर भी नहीं था, मिट्टी थी उसके अंदर। उसने वो मिट्टी डाली और डालने के बाद फिर आग जला करके वो सोना पिघाला गया, पूरे गोल्ड को गर्म करके लिक्विड किया गया, उसमें वो मिट्टी भी पड़ी हुई है। और फिर ये किया कि वो जो सोना गर्म होके लिक्विड हो गया तो उसमें से उसने एक गाय की मूर्ति बनवाई लिक्विड गोल्ड में से, और पूरी मूर्ति उसने तैयार करवा दी। अब जब ये मूर्ति तैयार हो गई तो अजीब ये मूर्ति थी, कैसी मूर्ति थी, अल्लाह फरमाते فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار। उस मूर्ति के अंदर जान थी, यानी वो जिंदा जैसी मूर्ति हो गई, और उस मूर्ति में से गाय की आवाज भी निकलने लगी, जैसे गाय बोलती है ऐसी आवाज भी उसमें से निकलने लगी। जब उस गाय में से, हालांकि वो तो एक मूर्ति थी सोने की, लेकिन उसमें से जिंदा गाय की आवाज निकल रही है। अब सामरी ने शैतान वाला काम चालू किया, सब पब्लिक को जमा करके क्या कहता है, फकालू हाजा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसी अफला यरौन अल्ला यरजिउ इलैहिम कौला। कहता है सामरी कि ये जो है ना, ये गाय देव जिसमें से आवाज आ रही है मूर्ति में से सोने की, ये तुम्हारे भी खुदा है और मूसा अलैहि सलाम के भी खुदा यही है, यही मूसा के भी अल्लाह और तुम्हारे भी अल्लाह। फिर आगे उसने जबरदस्त तौहीन की बात की, अल्लाह के नबी का नऊज़ु बिल्लाह इंसल्ट किया। क्या फनसी का, मूसा अल्लाह को भूल गए और अल्लाह को ढूंढने के लिए तूर पहाड़ पे गए। अल्लाह तो ये रहा, यही खुदा है हमारा, का मूसा भूल गए और भूल के मूसा पहाड़ पे चले गए। फनसी, अब लोगों ने देखा कि लगता तो कुछ ऐसा ही है, जहां चमत्कार वहां नमस्कार, दुनिया का जाप्ता है। कोई एकाध बापू एकाध बीमार को अच्छा कर दे तो लाइन लगना चालू हो जाती है, ये जाप्ता है दुनिया का। अब लोग जमा होने चालू हुए कि वाकई लगता ऐसा ही है कि ये अपने खुदा है और मूसा अलैहि सलाम के भी यही खुदा है। सब झमेला चालू हो गया, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, शुरू हो गया धंधा। और सामरी बन गया उसका महाराज, बैठ गया उसके ऊपर। हजरत हारून अलैहि सलाम समझा रहे हैं, अरे अल्लाह के बंदे, ये क्या तूने धंधा चालू किया। लेकिन वो मानता नहीं, मुफ्त में इनकम चालू हो गई, लोगों को गुमराह करना शुरू हो गया। चुनांचे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को तूर पहाड़ पे इत्तिला दी, और इत्तिला ये दी कि मूसा तुम यहां हो मेरे पास, रोजे रख रहे हो, तौरात किताब ले रहे हो, और वहां तुम्हारी कौम में गाय की पूजा चालू हुई है। अल्लाह ने इत्तिला दे दी मूसा अलैहि सलाम को। चुनांचे हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम जल्दी जल्दी अपना काम पूरा किया, तौरात किताब ली और तूर पहाड़ से फटाफट फटाफट रिटर्न लौट के आए। क्योंकि एक नबी को बेचैनी हो गई कि मेरी कौम के अंदर एक गलत काम चालू हो गया, एक फितना चालू हो गया। मूसा अलैहि सलाम फिक्र में फौरन लौट करके तशरीफ लाए, आए इतने गुस्से में, एक तो जलाली पैगंबर, फिर यहां शुरू हो गई थी बुत परस्ती, तो और गुस्सा मूसा अलैहि सलाम को। और आने के बाद पहला काम मूसा अलैहि सलाम ने ये किया कि अपने भाई के ऊपर गुस्से हुए, हजरत हारून अलैहि सलाम के ऊपर। हारून अलैहि सलाम की दाढ़ी पकड़ी, बाल पकड़े और पकड़ के झिंझोड़ा और झिंझोड़ के भाई को क्या कह रहे हैं,
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري.
هارون, ये लोग मूर्ति पूजाने लगे, तुम क्या कर रहे थे, तुमने इनको रोका नहीं? हजरत हारून अलैहि सलाम ने देखा कि भाई बहुत जलाल में, बहुत गुस्से में, लिखा है कि इतना गुस्सा था कि वो जो तौरात किताब अल्लाह के यहां से लेके आए थे वो तख्ती पे लिखी हुई थी, वो तौरात भी मूसा अलैहि सलाम के हाथ से नीचे गिर गई, इतना गुस्सा था अल्लाह के नबी को, और बास तख्ती तो उसमें से टूट गई, और गुस्से में अपने भाई को पकड़ के झिंझोड़े, हारून तुमने रोका क्यों नहीं लोगों को?
तो हजरत हारून अलैहि सलाम ने पहले मूसा अलैहि सलाम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, बहुत प्यार से कहा, قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي.
कहने लगे, मूसा मेरी माँ और तुम्हारी माँ एक है ना, मेरी माँ और तेरी माँ कोई अलग थोड़ी है, हमारी माँ एक है. माँ का नाम लेकर के हजरत हारून अलैह सलाम ने मूसा अलैह सलाम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की कि माँ का नाम आ जावे, माँ की शफकत याद आवे, माँ का प्यार याद आवे, माँ की ममता याद आवे, माँ की मोहब्बत याद आवे, और जरा भाई का गुस्सा ठंडा हो जावे. का भाई मेरी दाढ़ी और बाल को छोड़ो, फिर जरा ठंडे होके बात करो. ला ताखुज़ बिलहियती वला बिरासी. चुनंचे मूसा अलैहि सलाम ने दाढ़ी और बाल छोड़ दिए. का बताओ बात क्या हुई? का भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, ये लोग माने नहीं, मैं क्या करूं, मैंने पूरा फर्ज अदा कर दिया समझाने का. चलो ठीक बात है. फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम पूरे गुस्से में वो सामरी के पास गए जिसने ये फितना खड़ा किया था, और जाकर के उसको सवाल किया, قال فما خطبك يا سامري. अबे सामरी, ये फितना तूने क्यों खड़ा किया? तो सामरी जवाब के अंदर कहता है, हजरत मैं आपको एक बात बताऊं, डिटेल से जरा सुनो. का जब दरिया में 12 रास्ते बने थे और 12 रास्तों के ऊपर से फिरौन गुजरने गया तो फिरौन और उसका लश्कर डूब के खत्म हो गया, और उसी 12 रास्तों के ऊपर से हम लोग पार होके निकल गए, तो कहा वहां जिब्राइल अमीन आए थे घोड़े के ऊपर सवार होकर के, और मैंने देखा कि जिब्राइल के घोड़े के पैर जहां पड़ते हैं तो उस घोड़े के पैर में अल्लाह ने अजीब बरकत रखी थी कि जहां जिब्राइल के घोड़े का पैर पड़ता है वहां सूखी जमीन के अंदर हरी हरी घास उग जाती है, जमीन सूखी होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन जहां जिब्राइल के घोड़े के पैर पड़े वहां दरख्त तो उगते हैं, हरे हरे घास उग जाते हैं. ये मैंने मंजर देखा तो मुझे यकीन हो गया कि जिब्राइल के घोड़े के कदम मुबारक जहां पड़ते हैं वो मिट्टी बहुत बरकत वाली मिट्टी होती है. तो मैंने वो मिट्टी चुपके से उठा ली और उठा के पूरी का बांध के मैंने रख लिया था, और वही जो मिट्टी थी वो मिट्टी मैंने उस सोने के अंदर डाल दी, और उस मिट्टी की बरकत और हारून अलैहि सलाम की दुआ. एक तो वो मिट्टी की बरकत, जिब्राइल के कदम के नीचे की घोड़े के कदम के नीचे की मिट्टी, और मैंने हारून अलैहि सलाम से ये दुआ करवाई थी कि मेरी जो मुराद होवे वो पूरी हो जावे. और मेरी मुराद ये थी कि इस मूर्ति के अंदर आवाज और जिंदगी पैदा हो जावे, ये मेरी मुराद थी. तो कहा वो मूर्ति में से आवाज निकलने लगी और जिब्राइल के घोड़े की मिट्टी की बरकत. उसने ये बात कही, कहता है वो जालिम, قال بصرت بما لم يبصروا بي.
اللہ نے اس ظالم کی بات قرآن میں نقل فرمائی, قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
کہا حضرت ایک چیز کسی نے نہیں دیکھی تھی, میں نے اکیلے نے دیکھی تھی, کہا کہ وہ جبرائیل کے گھوڑے کو میں نے دیکھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ گھوڑا دیکھا ہوگا, جبرائیل کو بھی دیکھا ہوگا, لیکن پوری قوم کو وہ گھوڑا نظر نہیں آیا, اکیلے سامری کو نظر آیا, اور جبرائیل امین بھی اکیلے سامری کو نظر آئے اور کسی کو نہیں دکھے. یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ بھی ایک عجیب سوال ہے کہ ہزاروں آدمی تھے وہاں پر دریا کو پار کرنے میں, کسی کو جبرائیل نظر نہیں آئے, اکیلے فتین سامری کو نظر آئے. اس کی بھی بڑی عجیب داستان ہے کہ اس کو کیوں اکیلے کو دکھے. کہ جب یہ سامری پیدا ہوا تھا تو اس زمانے میں فرعون کی پولیس ہر بچے کو قتل کر دیتی تھی, جو بچہ پیدا ہوئے اس کو قتل کرو, فرعون کا آرڈر تھا, اور ایسا خطرناک آرڈر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک دن میں 70,000 بچوں کو فرعون نے قتل کروایا تھا. 70,000 بچوں کو فرعون نے قتل کروایا, ایسا ظلم ہوتا تھا. تو یہ سامری کی ماں سوچنے لگی کہ ابھی میرے بچے کو پولیس ذبح کر دے گی, تو بچے کو لے کے گئی دور ایک پہاڑ میں, پہاڑ کی کیو میں گئی, گوفا کے اندر, اور گوفا میں اپنے چھوٹے بچے کو رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک پتھر ڈھانک دیا کہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں, میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی کہ پولیس آ کے میرے بچے کو ذبح کرے, اس گوفا میں چھوڑ دیتی ہوں. وہاں چھوڑ دیا, اور کبھی کبھی چپکے چپکے جاتی تھی بچے کو دیکھنے کے لیے. اب اللہ کی قدرت دیکھو, خدا کی شان دیکھو, اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس بچے کو اللہ تعالی زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو روایات میں ہے کہ اللہ نے خود جبرائیل امین کو ذمہ داری سونپی کہ اس بچے کو کھانے پلانے کی ذمہ داری تمہاری. تو کہا جبرائیل روزانہ 3 انگلی پر اس کا کھانا لے کے جاتے تھے, کہ ایک انگلی کے اوپر شہد ہوتا تھا ہنی, دوسری انگلی کے اوپر مکھن ہوتا تھا, اور تیسری انگلی کے اوپر دودھ ہوتا تھا. جبرائیل جاتے اور اس گوفا کے اندر بچے کو چٹا دیتے, شہد بھی چٹاتے, دودھ بھی چٹاتے, مکھن بھی چٹاتے, اور اس کی وجہ سے سامری کو زندہ اللہ نے رکھا. دیکھو خدا کی قدرت کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اس کو بڑا کیا. اب یہ سامری دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا, تو چونکہ اس کو روزانہ آ کے دودھ مکھن شہد جبرائیل پلاتے تھے, اس لیے جبرائیل کو یہ پہچانتا تھا یہ سامری, اور کوئی پہچانتا نہیں تھا, اس لیے اس نے وہ مٹی اٹھا لی. بہرحال اس نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ بدبخت, تو نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے, میں تیرے اس دیوتا کو جو گائے دیو تو نے بنایا ہے اس کو میں ختم کر دوں گا, اس کو میں تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا, اس کو میں کٹوا دوں گا, جلوا دوں گا, پانی میں بہا دوں گا اس کو, تاکہ بت پرستی ختم ہو جائے. اب یہ تو تمہارے دیو کو ہم پانی میں ڈال دیں گے, ختم کر دیں گے, لیکن اب مسئلہ رہا کہ جن لوگوں نے سامری کی بات مان کر کے مورتی پوجا کی ان کا کیا؟ ان کے لیے اللہ کا حکم آیا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم.
का जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की उन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जावे, ये अल्लाह का हुक्म है। तुम्हारी सजा ये कि तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे अल्लाह का हुक्म था जितने मूर्ति पूजा करने वाले सबको कत्ल करो। अब मूसा अलैहि सलाम ने इरादा किया कि सामरी जो फाउंडेशन है, बुनियाद है इस फितने को चालू करने की, इसको मैं अपने हाथ से कत्ल करूं। ये सबसे बड़ा फितीन जिसने ये गलत चीज चालू की, इसको मैं खुद कत्ल करूं। बस ये पॉइंट सुनाने के लिए ये वाकिया मैंने आपको सुनाया। चुनांचे मूसा अलैहि सलाम ने जब कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह के यहां से हुक्म आया कि मूसा सामरी को कत्ल मत करो, सामरी को कत्ल मत करो, आखिरत में उसको जहन्नम की सजा होगी, अभी सामरी को कत्ल मत करो। अल्लाह का हुक्म आ गया कि इसको कत्ल नहीं करना। अब मूसा अलैहि सलाम ने उसको बद्दुआ दे दी, ऐसी खतरनाक बद्दुआ दी। क्या बद्दुआ दी? قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس। ये बद्दुआ या कलिमात है मूसा अलैहि सलाम के। मूसा अलैहि सलाम ने कहा बे सामरी, तुमने इतना बड़ा फितना क्यों खड़ा किया था? ताकि पब्लिक तेरे पास जमा हो गए, तेरे पास आकर के तेरी मूर्ति की पूजा करे और लोग आकर के तुझको बड़ा पुजारी समझे, महाराज समझे, तुझे आ आकर के लोग गिफ्ट देवे, इसके लिए तूने ये फितना चालू किया था? जा, मैं ऐसी बद्दुआ करता हूं कि कोई तेरे पास नहीं आएगा, ऐसी मेरी तेरे लिए बद्दुआ है। और अल्लाह के नेक बंदों की बद्दुआ से हमेशा बचना चाहिए। इनकी बद्दुआ लग जाए इंसान की दुनिया आखिरत तबाह हो जा रहे। अब मूसा अलैहि सलाम ने उसको बद्दुआ दे दी। बद्दुआ का असर ये हुआ कि कोई भी आके सामरी की मुलाकात करता था तो सामरी को भी बुखार आ जावे, उसको भी बुखार आ जावे, दोनों को बुखार आ जावे, दोनों को ताव चालू हो जावे, दोनों बीमार हो जावे। तो अब सामरी ने ये देखा कि कोई भी मिलने आवे तो दूर से चिल्लावे, भाई मेरे पास मत आना, तू जा वापिस, वरना तू भी बीमार मैं भी बीमार पड़ूंगा। दूर से चिल्लाता था अंतकुल लामिसास। जिस काम के लिए फितना चालू किया, हजरत मूसा अलैहि सलाम की बद्दुआ उसको लग गई, कोई उसके पास आता नहीं था। लेकिन आपके दिल में भी ये सवाल आता होगा कि अल्लाह ने क्यों मना किया कि मूसा सामरी को कत्ल मत करो, आखिरत में है उसके लिए जहन्नम। अल्लाह के यहां से वही आई कि मूसा भले ये सामरी ने फितना खड़ा किया, ये बड़ा बुतपरस्त मुशरिक है, लेकिन उसके दो काम ऐसे हैं कि उन दो कामों की बरकत से उसको हम दुनिया में तुमको कत्ल नहीं करने देंगे। उसके दो काम ऐसे हैं जो हमको बहुत पसंद हैं, हमारी नजर के अंदर वो बड़े प्यारे काम है अल्लाह की नजर में। अब आप सोचो कि इतना खतरनाक आदमी जिसने मूर्ति पूजा चालू करवाई बनु इसराइल में, और जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की उन सब के लिए अल्लाह का ऑर्डर सबको कत्ल करो, लेकिन जिसने चालू करवाया, इतना बड़ा कितने वाला आदमी, खुद मूसा अलैहि सलाम कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? नहीं, इसको कत्ल मत करो। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसकी दो खूबियां हैं जिन खूबियों की वजह से हम उसको दुनिया में माफ करते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी खूबियां होगी। अल्लाह ये दो खूबियां हम सबको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज के जमाने में इन दोनों खूबियों को अपनाने की बहुत जरूरत है, खुसूसन हम मुसलमानों को। और हकीकत है जिसने इन दोनों खूबियों को अपना लिया, अल्लाह उसको दुनिया में इज्जत का आली मकाम अता फरमाएंगे। और ईमान वाला मोमिन अगर ये दोनों खूबी को अपना लेवे तो ये जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता है, वो आदमी सीधा जन्नत में जाएगा, बहुत मुख्तसर रास्ता। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये सामरी की एक खूबी ये है कि वो बड़ा सखी आदमी है, सखावत बहुत करता है, और उसकी सखावत की वजह से हमने उसको दुनिया में माफ कर दिया, आपको कत्ल की इजाजत नहीं है। और दूसरी उसकी खूबी यह है कि वो लोगों की खिदमत करता है, और खिदमत भी ऐसे करता है कि उसके पीछे उसकी कोई गरज नहीं होती, खिदमत करता है वो लोगों की। का ये लोगों की खिदमत करना ये ऐसी खूबी है कि उसकी वजह से सामरी जैसे फितीन को भी अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। हकीकत बात है मेरे मुसलमान भाइयों, ये गरीबों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की और बेसहारा लोगों की, बीमारों की खिदमत करना ये इतनी बड़ी नेकी वाला अमल है कि सामरी जैसे सामरी को अल्लाह ने दुनिया में माफ फरमा दिया। अगर कोई मोमिन ये खूबी अपना लेवे तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में सीधा दाखिल फरमा देंगे। ये जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता है खिदमत करना। और आज हम दुनिया में फरियाद करते हैं कि ये क्रिश्चियन मिशनरी वाले खिदमत के जरिए, दवाओं के जरिए, मेडिकल के जरिए लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, वो खिदमत करते हैं। काश के मुसलमान ये काम करें, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हदीस में आता है कि मदीना में अगर कुछ औरतें बेवा होती, बेसहारा होती, हुजूर उनका पानी खुद भर के लाते थे, हुजूर पानी भर के लाते उनका। ये वो खिदमत है कि बड़े से बड़े दुश्मनों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करने का जरिया बन जाती है। इसलिए अपनी खिदमत को बढ़ाओ, खूब खिदमत को आम करो, ये जन्नत में जाने का आसान रास्ता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया नहीं, कितनी प्यारी बात फरमाई, का तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर, गोहर कहते कीमती मोती को, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। का ये खिदमत करके किसी की दुआ ले लेना, ये इतनी कीमती चीज है कि बड़े से बड़े पापी को जन्नती बना देती है। इसीलिए मेरे दीनी भाइयों, इस लाइन में आगे बढ़ो, हमारे मुसलमान इसमें आगे बढ़े और जाकर के बेसहारा लोगों की खिदमतें करें, बीमारों की खिदमत करें, इंशाल्लाह उनके दिलों के अंदर से नफरत निकल जाएगी। तो आज इसकी जरूरत है, ये खिदमत करना ऐसा काम है कि बड़े से बड़े दुश्मन के दिलों के अंदर से नफरत निकल जाती है और मोहब्बत पैदा होती है। आज अगर हम खिदमत करने वाले बनेंगे, देखो हमारी शरीयत तो कितनी अच्छी शरीयत है, आप हैरत में पड़ोगे। सिर्फ जकात की रकम मसला है मुसलमानों को देना, सिर्फ जकात की रकम, बाकी सदकतुल फितर, दूसरे तमाम सदकात और खैरात आप गैर मुस्लिमों को दे सकते हो, ये मसला है शरीयत का। हमारी शरीयत ने उसमें हमको कोई पाबंद नहीं रखा, कोई जख्मी, कोई बीमार, कोई दुखी किसी भी मजहब का होवे, लेकिन वो बेचारा दुखी है, परेशान है, बीमार है, जाओ उसकी खिदमत करो, इंशाल्लाह खिदमत की बरकत से उसके दिल के अंदर इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा होगी और नफरत निकल जाएगी और वो इस्लाम से करीब आएंगे। और वो जो इस्लाम से करीब आएंगे, ये दीन की वो दावत और तबलीग होगी कि उस दावत और तबलीग की बरकत से वो ईमान को कबूल करेंगे। आज इसकी जरूरत है। मैंने यही बात सुनाने के लिए पूरा सामरी का किस्सा सुनाया कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करना और सखावत करना, ये दो काम ऐसे हैं कि सामरी जैसे फितीन के लिए अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा उसको दुनिया में कत्ल मत करो। अल्लाह हमें इस खिदमत के मैदान में आगे बढ़ने वाला बनाए, बढ़ चढ़ के अल्लाह हमें हिस्सा लेने वाला बनाए और हम ऐसा हिस्सा ले कि दुनिया की अकवाम हमारी खिदमतों से मुतासिर होकर के हमारे दीन को कबूल करने वाले बन जाए और इस्लाम दुनिया में फैले, बदगुमानियां खत्म हो, लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो इस्लाम के बारे में। अल्लाह हमको इसकी सआदत अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लो। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تو ہم سب کے دلوں کے اندر تیری مخلوق اور تیرے بندوں کے لیے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ انسانیت کی خیر خواہی پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم کو تیری مخلوق کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک ہم نے اس لائن میں پیچھے رہ کر کے، اے اللہ ہم نے بڑا جرم کیا ہے، ہماری اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اچھے اخلاق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، بیکورڈ سمجھتے ہیں، پسماندہ سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں۔ اے اللہ اس گناہ سے ہمیں سچی اور پکی توبہ عطا فرما، تیرے ایک ایک بندے کا ادب اور احترام عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تیری رضا اور محبت والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو بدگمانی ہے، جو ناراضگی ہے، تیرے فضل اور کرم سے ختم فرما دے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت بٹھا دے، عظمت بٹھا دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما دے۔ ہم سب کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما، قبر کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو تیرے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سخاوت کا جذبہ عطا فرما دے اور بخل سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک اخلاق لے کر کے آئے، اے اللہ ان مبارک اخلاق کو زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، نبوی اخلاق سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔